अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय अद्वैत चंद्र जय गौर
भक्त चैतन्य भागवत अध्याय 3 और पयार संख्या 132। तो पिछले 2 दिन से हमने सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वराह रूप धारण करते हैं, मुरारी गुप्त के घर जाते हैं और मुरारी गुप्त उनकी स्तुति करते हैं। और फिर हम उसके बाद सुन रहे थे नित्यानंद प्रभु के दिव्य लीलाओं के बारे में, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर में प्रकट होते हैं, एक चकरा नाम के गांव में, राड़ देश बंगाल में। और फिर एक दिन एक सन्यासी आकर उनको अपने साथ ले जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो निमाय जो नित्यानंद प्रभु हैं, फिर तीर्थ यात्राएं करते हैं, सेतुबंध जाते हैं, बौद्धालय गया, काशी प्रयाग मथुरा द्वारका, कई स्थानों की यात्रा करते करते वो मथुरा आते हैं। और मथुरा आकर अपने बलराम लीला का स्मरण उन्हें हो आता है। और बलराम लीला का स्मरण करते ही बाकी ग्रंथों में वर्णन आया है कि जब नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने देखा कि वृंदावन में तो सारे जो आसन हैं कृष्ण के वो सब खाली हैं। नित्यानंद प्रभु कहते कि मैं वृंदावन में सब जगह घूमा लेकिन मुझे कृष्ण नजर नहीं आए। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन में किसी से पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है, तो कोई उनको कहता है कि कृष्ण तो नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। तो ये सुन के नित्यानंद प्रभु नवद्वीप चले जाते हैं। और कल हमने सुना था कि नवद्वीप जब नित्यानंद प्रभु गए तो नंदन आचार्य के घर में वो रुकते हैं और बलराम की तरह उनके सौंदर्य का वर्णन किया था। और फिर किस प्रकार से कोई व्यक्ति उनके संभाषण को सुनता है तो कर्मबंध का विनाश होता है, तो इन सब चीजों की चर्चा हो रही थी। तो आज हम सुनते हैं आइला नदिया पुरे नित्यानंद राय सकल भुवने जय जय ध्वनि गाय। कि नित्यानंद प्रभु नदिया में आते हैं, जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो सारा जो आकाश है वो उनकी जय जय की ध्वनि की गर्जना करता है। से महिमा बले है न के अच्छे प्रचंड जय प्रभु भांगीला गौर सुंदर रदंड। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जिन्होंने साक्षात गौरांग महाप्रभु के दंड का 3 टुकड़े किए उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, कौन ऐसा भाग्यवान है। चैतन्य महाप्रभु को सबसे प्रिय नित्यानंद प्रभु है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो जब सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी के पास ही एक गांव है कमलापुर या चंदनपुर कहते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए और वहाँ कपोतेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ शिवजी ने बहुत तपस्या की। और कृष्ण एक दिन जब उनको मिलने आए शिवजी को तो बिल्कुल कबूतर के जैसे दिख रहे थे, बहुत बहुत पतले हो गए थे, और तो इसलिए उनको कपोतेश्वर महादेव कहा जाता है। उसके पास ही बिलेश्वर महादेव है, बहुत अच्छे स्थान है, कभी आप जाते हैं। बिलेश्वर महादेव ऐसा स्थान है कि जहाँ से वो जो वहाँ छेद है, बिल है, होल है, जो पाताल लोक में जाता है वहां से आसुर लोग आते थे, ऊपर निकलते थे उस छेद से युद्ध करने के लिए। तो वे जब पांडव गए थे उस स्थान में तो कृष्ण और पांडवों ने उस स्थान को बंद कर दिया, उनसे फाइट किया, कोई आसुर ऊपर नहीं आएगा ओरिसा में जगन्नाथपुरी के पास। और फिर शिवजी को वहां रखा क्षेत्रपाल गार्डिंग करो, कि कोई बिल से ऊपर ना आ जाए, तो इधर वहां बिलेश्वर महादेव है। तो चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने गए और नित्यानंद प्रभु को कहा कि मेरा दंड आप स्वीकार करो। तो नित्यानंद प्रभु ने दंड हाथ में पकड़ा और वो देखने लगे, कहते कि जिसको मैंने मेरे हृदय में धारण किया है वही प्रभु आपको उठा के चलते हैं, हाँ ये क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि ये उचित नहीं है, तो उन्होंने 3 टुकड़े किए। तो वैष्णव आचार्य गण कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, 3 टुकड़े क्यों किए? क्योंकि महाप्रभु ने तो 1 दंड संन्यास लिया था, उस समय वैष्णव संन्यास नहीं था। अभी हमारे वैष्णव जो सन्यासी हैं उनका वो जो दंडा होता है उनमें 3 लकड़ियां होती है बांस की, उसको त्रिदंड कहा जाता है। हाँ अलग अलग होती है, उसको बांधते हैं बाहर से कपड़े से लपेटते हैं ना। तो उस समय तो केवल मायावाद संन्यास अवेलेबल था जो शंकराचार्य ने शुरू किया था, वैष्णव संन्यास नहीं था। तो 1 दंड संन्यास लेना पड़ता था, जो भी संन्यास लेगा 1 दंड संन्यास, और वो जनेऊ नहीं रख सकता, फिर शिखा नहीं रखेगा। तो महाप्रभु को कोई शिखा नहीं थी, संन्यास जब लिया था उन्होंने, और कोई ये जनेऊ नहीं था, बल्कि वो ब्राह्मण थे, वैष्णव है महाप्रभु। तो लेकिन वो संन्यास उन्होंने स्वीकार किया था, चैतन्य भागवत में आता है वर्णन। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर महादेव का दर्शन किया, उनके सामने नृत्य किया, गाए, शिव जी का गुणगान किया, जब आए और वहां से चलते चलते जब आए तो वहां से उनको जगन्नाथ जी का फ्लैग दिखाई दे चक्र। तो क्या देखा कि जगन्नाथ जी के वहां उनको एक सुंदर सा बालक दिखाई देने लगा, शान वर्ण का। तो महाप्रभु भागने लगे जगन्नाथ जी के उस देव के टेम्पल को, दौड़ने लगे और इतना और दौड़ने लगे में जो रोते थे गिर जाते थे, वो 1 घंटा लगता है लेकिन उनको कई समय लगा वहां पहुंचने के लिए, 9 घंटे या कितने घंटे लगे ऐसा वर्णन आता है। और जब 18 नाला के पास आए तो नित्यानंद प्रभु को कहा, हे नित्यानंद मेरा दंडा कहाँ है? क्योंकि अभी तो 18 नाला जो ब्रिज है वहां वो घुसने के लिए है, जगन्नाथपुरी में आप घुसते हो तो एक ब्रिज को क्रॉस करो और घुसो, और वो ब्रिज प्रताप रुद्र राजा ने बनाया था, बहुत पुराना है, आज भी है बिल्कुल अच्छी तरह से है वो ब्रिज, 18 नाला, उसको 18 वो है ऐसे गोल। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो आज भी महाप्रभु के चरण चिन्हों का कुछ है वहां, गौड़िया वैष्णव जाते हुए स्थान में। हमने जगन्नाथपुरी की परिक्रमा की थी जब हम गए थे 2 साल पहले, बहुत अच्छा है जगन्नाथपुरी का परिक्रमा, जैसे वृंदावन का परिक्रमा करते हैं, जगन्नाथपुरी का परिक्रमा बिल्कुल समुद्र के किनारे बहुत चलना पड़ता है, ऐसे बहुत अच्छा है। तो जब महाप्रभु वहां आए, नित्यानंद प्रभु को पूछा कि हे नित्यानंद मेरा दंडा क्या है, कहाँ है? कहते कि आप कृष्ण कीर्तन में इतने मत हो गए थे, भावावेश में आके मैंने आपको पकड़ा और हम दोनों आपके दंड के ऊपर पड़े, इसलिए दंड के टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको 3 टुकड़े करके भार्गी नदी है वहां, भार्गी उसमें फेंक दिया था, इसलिए अभी उस नदी का नाम भी दंडभंगा नदी पड़ा है। हाँ इस्कॉन सेंटर है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कौन शक्तिशाली है, ऐसे नित्यानंद प्रभु का गुणगान कौन कर सकता है जिन्होंने महाप्रभु का दंड भी तोड़ दिया। तो इससे काफी शिक्षा है, महाप्रभु क्यों दंड मांग रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर भी कुछ ऐसे भावुक लोग होंगे जो नियमों का पालन नहीं करना चाहेंगे, ब्रह्मचार्य के अपने नियम हैं, सन्यास धर्म के अपने हैं, गृहस्थ के अपने हैं, वानप्रस्थ के अपने हैं। तो सन्यासी कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा परमहंस हो गया, परमहंस दंडा नहीं रखता। तो महाप्रभु दिखाना चाहते कि वो स्वयं भगवान है बल्कि परमहंस के धरातल पर है, लेकिन फिर भी वो दंडे को रखते हैं, मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को पालन करना चाहिए, ये महाप्रभु सिखाना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है उसको धोती लुंगी जैसे नहीं पहननी चाहिए, तो ये क्या है, प्रिंसिपल को पालन नहीं कर रहे हैं जो नियम है। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु ये इस लीला से सिखाते हैं कि भक्त चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन जो उसके आश्रम के धर्म है जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म है, गृहस्थ आश्रम के धर्म है, संन्यास आश्रम को उनको पालन करना चाहिए। उनको पालन करते तो प्योरिफिकेशन होता है और फिर हम ढोंग करने की प्रवृत्ति से बचते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं आती हमारे अंदर, चीटिंग क्या कहेंगे, धोखा देने की प्रवृत्ति, या फिर कपटता नहीं आती, क्रूकडनेस। यदि हम ऐसे जो दिए नियमों को पालन करते बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट, ठीक है, पालन करेंगे, इस प्रकार से महाप्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं। और महाप्रभु की लीलाओं से तो इतना शिक्षा है, महाप्रभु ये मतलब उनका चरित्र तो शिक्षाओं से भरा पड़ा है। आपने आचार्य प्रभु दिखाए सबारे, मतलब हर चीज उन्होंने की है वो शिक्षा ही शिक्षा है। वनिक अधम मूर्ख जे करिला पार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम लैले जार। तो कहते हैं कि वनिक और अधमों का भी जिन्होंने उद्धार किया और जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। पाई आनंदनाचार्य हर्षित हया, राखी लेना निज ग्रह भिक्षा कराया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करके नंदन आचार्य ने अपने घर में उनको रखा और बड़े ही प्रसन्नता के साथ उनको भोजन देकर अपने घर में ठहराया। तो आप अभी मायापुर में जाते हो तो इस्कॉन टेम्पल के पीछे जाते हो आप, तो वहां रोड में ही नंदन आचार्य का भवन है जहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहली बार मिले थे, और नित्यानंद प्रभु वहां ही ठहरे थे। आज वो स्थान है जहाँ ये मिले थे। नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमान, यहाँ जय सुने तारे मिले प्रेमधान। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि नवद्वीप में नित्यानंद चंद्र का आगमन हो रहा है, इसको जो सुनेगा उसको प्रेम धन मिलेगा। ये श्रवण बहुत शक्तिशाली चीज है। एक्चुअली कुछ भी आप कहो, आज मैं श्रीनिवास आचार्य के बारे में चर्चा कर रहा था पीपीटी में, पीपीटी भक्तों को क्लास दे रहा था, तो श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के प्रति इतना उनका अनुराग कि वो स्कूल में जाके पढ़ाई में उनका टेस्ट नहीं था, वो स्कूल में जाके नाम लेते रहते थे गौरांग नित्यानंद, और टीचर परेशान हो जाते थे। और फिर वो कहते थे तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा वगैरह, स्कूल ही नहीं जाते थे ठीक से। एक दिन पूरे किताब लेके गए स्कूल और टीचर को कहा पढ़ाओ मुझे, टीचर कहता मैं सब भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि वो श्रीनिवास आचार्य के प्रति कुछ ऐसी भावना से उन्होंने बोला था। तो लेकिन साक्षात उनके माता पिता भी बहुत डर जाते कि हमारा पुत्र यदि पढ़ेगा नहीं तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो जब वो सो रहे थे तो सरस्वती आती है और कहते कि सरस्वती देवी कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा है कि इसको सारा नॉलेज स्फुरित करने के लिए, इसको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो वे पढ़ते नहीं थे और समय गौरांग नित्यानंद, और रोज उनके पिता जिनका नाम चैतन्य दास था उनसे केवल पूछते रहते थे मुझे महाप्रभु के बारे में बताओ, महाप्रभु के बारे में सुनाओ, इतना सुनते रहते थे क्योंकि उनके पिता ही महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेमी थे। उनका नाम चैतन्य दास इसलिए पड़ा था कि जब एक दिन जा रहे थे नवद्वीप, तो क्योंकि बचपन से बहुत सुना था कि निमाई नवद्वीप में है, निमाई नवद्वीप में है, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, काजी को जो कर दिया, ऐसी काफी चीजें, तो इनको लगा था। इनका नाम गंगाधर भट्टाचार्य था, ऐसे कुछ था, गंगादास भट्टाचार्य। तो उनको लगा कि ये निमाई जो है नवद्वीप में इसको कभी तो देखना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया मैं जब निकल रहा हूँ तो अपने गांव से निकलते हैं और कटवा आते हैं, सोचते कि अभी मैं केशव भारती के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लूंगा और नवद्वीप जाऊंगा जहां देखूंगा ये निमाई क्या व्यक्ति है, क्या लीलाएं करता है। तो जैसे आए कटवा तो केशव भारती, हर कोई व्यक्ति कटवा में दौड़ रहा था और किसी को पूछते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहते मैं वहां जा रहा हूँ केशव भारती के आश्रम में जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय निमाई पंडित नवद्वीप से संन्यास लेने के लिए आए थे और बैठे थे और सारे लोग पूरा शहर इकट्ठा हो गया था और महाप्रभु बैठे थे गंगा स्नान करके और बार बार नाई को कहा था कि मेरा शेविंग करो। सारे लोग रो रहे हैं, कोई देख रहा है, तो ये इन्होंने वो चीज देखा कि निमाई तो शेविंग कर रहा है, संन्यास ले रहा है, तो इतने महाप्रभु के लिए पागल हो गए कि उनके मुंह में केवल एक ही नाम निकलने लगा, चैतन्य 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 चैतन्य, क्योंकि केशव भारती ने नाम रखा था श्री कृष्ण चैतन्य। तो घर के गांव भी गए, किसी से बात नहीं कुछ नहीं, केवल एक ही चीज निकलती थी चैतन्य। सारे गांव वालों ने देखा ये तो पागल हो गया है। तो फिर इन्होंने उसका उनका नाम गंगादास था, अभी नाम रखा चैतन्य दास। कब से चैतन्य दास जानने लगे, और फिर उनके ही पुत्र के रूप में श्रीनिवास आचार्य ने जन्म लिया। तो श्रीनिवास आचार्य हर समय कहते थे कि मुझे सुना मुझे सुना, तो पूरा गौर कथा सुनाते थे श्रीनिवास आचार्य को। तो इतना प्रेम हो गया कि उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, हर समय वो जाना चाहते थे लॉर्ड चैतन्य, नित्यानंदा, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके प्रति ऐसा लगता था कि कब इन वैष्णव से मिलूंगा, और अपने घर में रहते रहते थे। तो वैसे कहते कि जो सुनेगा नित्यानंद प्रभु के बारे में उसको कृष्ण के प्रति जो अनुराग है प्रेम है वो विकसित होगा। नित्यानंद आगमन जाने विश्वंबर अनंत हरिष प्रभु हैल अंतर। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यह जाना कि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आगमन हो चुका है, तो उनके हृदय में बहुत आनंद महसूस हुआ। पूर्व व्यापदेश सर्व वैष्णव स्थाने व्यंजय आछिन के मर्म नहीं जाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही सारे वैष्णवों के समक्ष इस बात को प्रकट कर चुके थे कि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। कौन है, कौन व्यक्ति आने वाला है नवद्वीप में? तो उन्होंने क्या कहा था उसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। वो कहते हैं, अरे बायो दिन दुई तीन रितरे कौन महापुरुष आसिबे थारे। तो ये बात कि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं, ये बात चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप वासियों को पहले ही बता दी थी, उनके अपने संगियों को श्रीवास आंगन में। एक दिन उन्होंने कहा कि अरे भाई कौन दिन कि दो या तीन दिन के बीच में कोई महापुरुष नवद्वीप में आने वाला है। दैवे से ये दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र सत्वर मिलीला यथा वैष्णवेर वृंद। तो दैववश वहां जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु विष्णु की पूजा कर रहे थे और वैष्णव उनको मिलने के लिए आ गए थे। शालिग्राम शिला थी ना उनके घर में, नहीं संन्यास के समय में, उन जब नवद्वीप में थे तो उनके वहां शेषशायी विष्णु, आज भी आप जाते हो तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज या भक्तिनोद ठाकुर जब उस मंदिर को बना रहे थे तो शेषशायी विष्णु मिले थे। जब जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, वहां छोटे से विग्रह है, दूर से दिखाई देते हैं छोटे से, वो महाप्रभु के घर में थे और उनकी शालिग्राम शिला थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए थे और लेकिन जब भी शालिग्राम का स्पर्श करते थे और रो पड़ते थे, इतना रोते थे इतना कि पूरा भीग जाता था शरीर, फिर सारा कपड़े निकालते थे, गंगा में स्नान करते थे, फिर आते थे कि अभी पूजा करूंगा, और जैसे स्पर्श करते थे सेवा के लिए पुनः आंखों से आंसुओं की धारा पूरा भीग जाते थे। दिन में 10 बार कम से कम 15 बार वो जाते थे गंगा स्नान करने और फिर कहते अभी नहीं पूजा करूंगा, फिर दूसरे दिन भी आए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी के मुड में है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का स्पर्श कर रही है, इस भावना में चैतन्य महाप्रभु रो पड़ते थे। तो उन्होंने सोचा ये शालिग्राम पूजा तो मुझसे होगी नहीं, तो उन्होंने गदाधर पंडित को बुलाया, कहा कि गदाधर आप शालिग्राम को ले जाओ और शालिग्राम की आप पूजा करो। तो गदाधर पंडित फिर उनकी पूजा करते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास जब ये सारे वैष्णवगण आ गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सभा का रास्ता ने प्रभु कहे न आपने, आज आमी अपरूप देखिल स्वप्ने। कहते हैं कि आज मैंने एक विलक्षण अद्भुत स्वप्न देखा है। ताल ध्वज करथ संसार रसार, आसिया रहिल रथ अमर दुयार। तो उन्होंने कहा कि एक रथ, वो रथ क्या है? वो कहते कि सारे संसार का सार ही है वो रथ, और उसके ऊपर ताल ध्वजा अंकित है, और वो मेरे घर के गेट के सामने आके खड़ा हो गया। महाप्रभु अपना स्वप्न उन वैष्णवों को बता रहे हैं, जो वैष्णव उनके पास आए थे जब चैतन्य महाप्रभु पूजा कर रहे थे। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंदे गति नहीं तीर। तो उन्होंने कहा जैसे ही वो रथ मेरे घर के सामने खड़ा हो गया, तो उस समय उस रथ से मैंने देखा कि उस रथ में एक बहुत विशाल काय प्रकांड शरीर जिसका है, ऐसा एक व्यक्ति, एक पुरुष उस रथ में था, और जिसके कंधे पर एक स्तंभ था। स्तंभ का मतलब है हल, और जो मुसल बलराम धारण करते हैं, और वो जो उस रथ के ऊपर थे वो स्थिर नहीं थे, हर समय हिलते दुलते रहते थे, बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकते। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाते, नीलवस्त्र परिधान नीलवस्त्र माथे। तो उन्होंने कहा कि उनके बाएं हाथ में एक वेत्र था, वेत्र में छड़ी थी, और छड़ी में एक कमंडलु बांधा हुआ था, और उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए थे, और सर में भी नीले वस्त्र ही उन्होंने धारण किए थे। वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, हलधर भाव है न बुझे जे चरित्र। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके बाएं कान में एक विचित्र कुंडल था, और उनके चरित्र को जब मैंने देखा सपने में तो ऐसे लग रहा था कि ये साक्षात बलराम है। यही बाड़ी निमाई पंडित तेरा हय हय, दश बार बीस बार यही कथा कह। और जो रथ पे जो व्यक्ति आया था, जो मुझे लग रहा था कि बलराम है, तो वो हर समय कहते थे कि ये बाड़ी निमाई का है, ये बाड़ी निमाई का है, मतलब ये घर निमाई का है। तो कहते एक बार नहीं, 10 या 20 बार उन्होंने इस बात को पूछा होगा। महा अवधूत वेश परम प्रचंड, आर कभू नहीं देखी ए मन उदंड। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। वो कहते कि वो महा अवधूत थे, और उनका जो वेश है वो बहुत प्रचंड था, और उदंड पुरुष के समान थे, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा किसी व्यक्ति को। देखिया संभ्रम बड़ा पायलाम आमी, जिज्ञासिला आमी को न महाजन तुम्हें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं बड़ा विचलित हो गया जब मैंने इस प्रकार के पुरुष को देखा, जो रथ के ऊपर आके मेरे घर के सामने खड़ा है, जो पूछ रहा है कि ये निमाय का बाड़ी है, ये निमाय का बाड़ी है। तो फिर मैंने पूछा कि आप कौन महापुरुष है, कौन महाजन है तुम्हें, आप कौन महापुरुष है। हसिया हमारे बले यही भाई है, तोमाय अमाय काली है भी परिचय। तो फिर वो जो महापुरुष हंसते हुए मुझे बोला कि ये मैं तो आपका भाई हूं, और हम दोनों का कल परिचय हो जाएगा कि हम मैं कौन हूं। हरिष बाड़िल सुने तहार बचान, अपनारे वासो मोहि जेन सही सम। तो जैसे उस महापुरुष ने ये बोला कि मैं तो आपका ही भाई हूं, और कल आपके साथ परिचय होगा, तो उनके इस वचनों को जैसे मैंने सुना तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैं भी अपने आप को भी वैसे समझने लगा कि माँ मैं आपका ही भाई हूँ। तो महाप्रभु को भी वैसे महसूस हुआ। कहते प्रभु र बाह्य सब गेला दूर, हलधर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर। तो ये कहते कहते हैं, क्योंकि अभी वो स्वप्न को बता रहे हैं सारे वैष्णवों को, और हलधर बलराम के भावावेश में आ गए, क्योंकि बलराम के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया, और बलराम से एक प्रकार से संवाद हुआ जो नित्यानंद प्रभु ने बात की, और उनकी जो बाह्य दशा है वो खत्म हो गई चैतन्य महाप्रभु की, और वो बलराम के आवेश में आ गए, बलराम के आवेश में आ जाते हैं और वो गर्जना करने लगते हैं जोर जोर से, मदान मदान बलि प्रभु डाके हुंकार सुनिते जना दुई कर्ण फाटे। तो कहते हैं कि जोर जोर से कहने लगे, मद आओ, मद मद लाओ, मद लाओ, मद मतलब मधु, हनी, हनी ले आओ, हनी ले आओ। तो ये चिल्लाने लगे और इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि दो जो कान हैं वो फट सकते हैं, इतनी जोर से वो चिल्लाने लगे। श्रीवास्तव पंडित बले सुना गोसाए जय मदिरा चाह तुम्हें से तुम्हारा ठाए। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि हे गोसाई, हे निमाई पंडित, आप सुनो कि जो मदिरा आप चाहते हो वो तो आपके पास ही है। तो वारुणी नाम का जो मदिरा था, बलराम जी पिया करते थे वारुणी, और मदोन्मत्त हो जाते थे, और कई प्रकार की लीलाएं आप कृष्णा बुक में पढ़ते हैं इससे संबंधित। तुम्हें जारे बिलाओ से तहा पाए कंपित भक्तगण दूरे रहे छाए। तो शिवास पंडित कहते हैं कि आप ये मदिरा जिसको देते हो वही व्यक्ति उस मदिरा को पीता है, और इस प्रकार से जब हो रहा था और महाप्रभु आवेश में आ गए थे बलराम के, तो सब वैष्णव कांपने लगे, डरने लगे, घबराहट हो गए, और वो कांपते हुए दूर खड़े होने लगे। मने मने चिंते सब वैष्णवे रगान अवश्य यहाँ रखे छो आछय कारण। तो सारे भक्त मन मन में ही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, निमाय को क्या हो गया, ये बलराम के आवेश में आए इसे मत क्यों मांग रहे हैं, हनी क्यों मांग रहे हैं। सुनने का कुछ कारण हो सकता है, कुछ कारण जरूर है। आर्या तर जब पड़े प्रभु अरुणा नयन हासिया दुलाय अंग जैन संकर्षण। तो फिर अपने जो लाल नेत्रों से निमाय पंडित आर्या और तर्जा पढ़ते रहे, और बलराम की भांति वो हंसने लगे और अपने शरीर को हिलाने लगे, क्योंकि बलराम का शरीर बहुत प्रकांड था और बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली थे बलराम। क्षण के हिला प्रभु स्वभाव चरित्र स्वप्नार्थ सवारे बाखाने राम मित्र। तो कुछ ही समय में चैतन्य महाप्रभु अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाते हैं, और वे बलराम मित्र महाप्रभु सबके सामने स्वप्न का अर्थ समझाने लगते हैं। तो वो कहते हैं, हे नभुजी मोरा चित्ते लय एक कथा कौन महापुरुष आशियाचे था। तो महाप्रभु कहने लगे कि ये सुन के मुझे लगता है ये स्वप्न मेरा ऐसा स्वप्न है जिससे एक चीज सीखने को मिलती है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि जरूर आज नवदीप में कोई महाजन आ गया है, कोई महापुरुष आ गया है। पूर्वे आमे बलिया छो तुमा सवार स्थाने कौन महाजन सने है वे दर्शने। तो महाप्रभु कहते कि मैंने पहले बता दिया था, मैं कह चुका था कि किसी महापुरुष के हमें दर्शन होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष लीला है, कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, और उनका मिलने का जो लीला है बड़ा ही अद्भुत है। और स्वप्न का अर्थ इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि जरूर आज कोई महापुरुष नवदीप में आया है और वो मुझे मिलेगा। तो इनको पता नहीं था किसी को कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं और वो नंदन आचार्य के घर में रुके हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पहली बार मिलेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य भागवत के, वृंदावन दास ठाकुर के।